आतूनी जुबर अल हदीद। अब प्रैक्टिकली देखिए, यहाँ से देखिए काम खुद साथ कर रहे हैं। ऑर्डर नहीं प्लेस कर दिया, लीडर्स को सर पे खड़ा होना पड़ता है। क्वालिटी कंट्रोल का बेस्ट तरीका टेक अ लुक, ज़ेरे निगरानी। जिस काम को कह कर पीछे हो जाएं, आपको कोई यकीन नहीं है वो होगा भी नहीं, और होगा तो कैसा होगा। खुद अपनी कस्टडी में काम करवा रहे हैं, इतना बड़ा बादशाह है, फाते आलम है, लेकिन कहता है लाओ मेरे पास लोहे के टुकड़े। जुबर जबूर की जमा, पत्रे टुकड़े, लोहा मोल्टेड आयरन। पता नहीं क्या उस वक्त टेक्नोलॉजी थी, कैसे उन्होंने स्टील मिल बना ली, कैसे लोहे को पिघला लिया। हत्ता इज़ा साबा बैना सौदाफईन, यहाँ तक कि जब इसने बराबर कर दिया दोनों ऊंचाइयों के दरमियान की जगह को। सदफ़ैन सदफ, सदफ क्या है? रोकना। सदफ अनहा पीछे हम बात कर चुके हैं, यानी एक ऐसी चीज़ जो रोक बन जाएगी। जब लोहे के तख्तों को जोड़कर उन्होंने दोनों पहाड़ों के दरमियानी दर्रे में दीवार खड़ी कर दी, तो कहा कालन फुखू, अब इसमें आग दहकाओ। बड़े पैमाने पे आग जलाई, वो जो लोहे के तख्ते लगाए थे वो गर्म हुए, तो वो जो सुराख थे ना उनमें भी लोहा पिघल के चला गया। मैं अक्सर सोचती हूँ क्या टेक्निक होगी। देखिए कोई उनके पास मशीनें नहीं थी, टूल्स नहीं थे, ब्रेन यूज़ करके ये कर रहे हैं। अब वो लोहा जब गर्म हुआ, हत्तैज़ा जालहु नारन, यहाँ तक कि जब बना दिया इसने इसको आग की माने, तख्ते गर्म हुए, सुरख हुए, पिघले। क़ाल आतूनी उफ़्रिग़ अलैहि क़तरा, कहा अब लाओ मेरे पास डाल दो उस पर पिघला हुआ तांबा। पहले लोहे की एक कच्ची कच्ची दीवार बना ली, उसके होल्स पूरे कर दिए, फिर ऊपर उसके पूरा तांबे की दीवार की, और एक आहनी दीवार बन गई। कहते हैं कि आज भी इस दीवार के आसार बहरे कैस्पियन के मगरबी इलाके के साथ मौजूद हैं, यानी दारयाल और दरबंद के दरमियान आज भी मौजूद है। 50 मील लंबी, लिख लें दीवार की लंबाई चौड़ाई, 50 मील लंबी, 29 फिट ऊंची और 10 फुट चौड़ी थी। चौड़ी समझ रहे, थिकनेस, के दुश्मन फैलांग ना सके। आज से सैकड़ों साल पहले लोहे और तांबे की इतनी बड़ी दीवार तामीर करना, ये एक बहुत बड़ा कारनामा था। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको मुहिम कहा, अहम बात थी। और मिस्र के असवान डैम से भी बड़ी, जिसे असदुल आला कहते हैं, यानी ऐसी दीवारें दुनिया में खींची गईं, लेकिन ये अपनी मिसाल की एक थी। और अब क्या हुआ, फितनों के आगे दीवार खड़ी हो गई। फमस्ताऊ अय्यसखरू, अब ना तो वो कौन याजूज माजूज इसके ऊपर चढ़ सकेंगे, और वमस्तताऊ लहू नकबा, ना ही इसमें ज़र्ब लगाएंगे, नकब लगाएंगे। नकब किसको कहते हैं? तो ये नकब से मिलता हुआ कोई लफ्ज़ है, निकाब। ये निकाब क्या है, सुराख क्या है? यहाँ सुराख होता था एक, सिर्फ आँख से देखने के लिए निकाब का सुराख बनाते थे। और पहले है इस्ताऊ, आगे है इस्तताऊ, फ़र्क समझ आया? अलिफ सीन ता लग जाए, टू सीक, तलब। असल लफ्ज़ इस्तताअत है, लेकिन अलिफ सीन के बाद तोए से पहले ता का लगना तलब का मानी आ गया। इतना बड़ा कारनामा किया, क्या करते दीवार के नीचे लिखते मेड बाय ज़ुल्करनैन, झंडा लगाते ज़ुल्करनैन का, कार्विंग करते का नहीं। खाला हाजर रहमतु मे रब्बी, ये है उनकी अंदर की खूबसूरती, अपने नाम ये कारनामे नहीं रखे। कहने लगे ये रहमत है मेरे रब की। इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम हुआ, कोई फ़ख्रिया कलमा नहीं, कोई हा हुर्रा के नारे नहीं, ये असल में ईमान वाले की शान है। हाँ साथ ही बता रहे हैं कि मैंने तो अपनी सी कोशिश कर दी, कोई बड़ा वादा नहीं कर रहा कि अब ये हमेशा रहेगी, बल्कि फ़ैज़ा जा वादु रब्बी जा लहू दक्का, और जब आ जाएगा मेरे रब का वादा तो कर देगा इसको रेजा रेजा, रेजा रेजा होगी। इससे पता चलता है कि ईमान वाला अपनी कोशिशों को अल्लाह के मुकाबले में छोटी ही समझता है। ये देखिए कितना प्यारा ईमान है, मैं जो कर रहा हूँ ना। अब मैं मिसाल इसको ऐसे लूँ कि हम कहें जी कि हम कुरान पढ़ाकर फितनों के आगे दीवार खड़ी कर देंगे, हमारे पास बच्चा आ जाए तो वो सुलझ जाएगा। नहीं, जो चाहे रब, हम कोशिश कर सकते हैं फितनों को ख़त्म करने की, जहालत को ख़त्म करने की, लेकिन उसके बाद फिर हम उसको इससे ज़्यादा आगे नहीं ले जा सकते। और वाकई कहते हैं कि वक्त के साथ साथ वो दीवार जो थी ख़त्म हो गई, आसार मौजूद हैं, और वकार नवाद रब्बी हक का, और मेरे रब का वादा सच्चा है। अब आप देखिए यहाँ पे ज़ुल्करनैन की खूबियाँ, उसका किरदार। आपके मेरे लिए एक ज़रबुल मिसल बन गया। और जब ये बन गया तो फिर क्या हुआ? अब अगला आखिरी हिस्सा जो है ना, इसमें क़यामत का मंज़र है। मैं जब भी इन आयतों को पढ़ती हूँ ना, बहुत ज़्यादा मेरा जहन फास्ट चलता है। कैसे? व तरक ना बाद हम यौ मज़ी यमू जुफ़ी बाद, और हम छोड़ देंगे इनको उस दिन वो एक दूसरे में घुत्तम गुत्ता हो जाएंगे। घुत्तम गुत्ता क्या होता है? दू बदू लड़ना। कहते हैं कि एक तरफ तो ये क़यामत की तरफ इशारा, और दूसरा क़यामत से पहले होने वाले जंगी वाक़यात की तरफ इशारा। कुर्बे क़यामत के मामले में जब जाजूज माजूज का ज़हूर होगा, तो अहदीस में आता है कि ये जहाँ से गुज़रेंगे ना, दरियाओं और समंदरों का पानी पी जाएंगे, हर चीज़ को हड़प कर देंगे। बाज़ कहते हैं हो सकते ही आदमखोर भी हों और ज़रूरत पड़ने पर इंसानों को खा जाएँ। देखिए, आज आप कुछ कौमों के बारे में सुनते हैं, सांप खाते, बिच्छू खाते, कुत्ता खाते, बिल्ली खाते, और एक तस्वीर के मुताबिक एक न्यूली बॉर्न बेबी को रोस्ट खा रहा है। इन सब कहते हैं कि सबसे मज़े का गोश्त फीटस का गोश्त होता है। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसी बातें अगर मिलती हैं तो याजूज माजूज के लिए क्या मुश्किल है। और सूरत अलम्बिया आयत 96 में हम इनकी फिर डिटेल्स पढ़ेंगे। वहुम मिन कुल्ली हदबी यंसिलून, वो हर ऊपर की ढलवान से, यानी पहाड़ की ढलवान से उतरते हुए दिखेंगे। जब ये आएंगे तो ऐसे लगेगा ये बुलंदियों से आ रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आती हैं। और उसके बाद व नुफ़ी खफ़े सूर, और फूक दिया जाएगा सूर में। फजमाना हम जमा, और हम इन सब को जमा करेंगे, यानी दुनिया में फितने होंगे, फसाद होंगे। हदीस से पता चलता है क़यामत बदतरीन मखलूक पर आएगी। दुनिया में लफ्ज़ अल्लाह बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। उसी की तरफ इशारा है कि ये सब फितने होंगे। और आप सोचिए फिर आज के बाद वाला दौर अच्छा है कि बुरा है? हदीस में आता है कि बाद वाले दौर के लोग जब भी आएंगे कहेंगे हमसे पिछलों का दौर कितना अच्छा था। क्या आज हम नहीं अक्सर बोलते दादा का दौर कितना अच्छा था, 20 साल पहले कितना सुकून था, आज ये वो? तो हमारी नस्लों के लिए फिर चैलेंज क्या है? उनका ईमान बचाना है, उनका दीन बचाना है, उनकी जान बचानी है, तो उनको इस किताब के साथ जोड़ना पड़ेगा, वरना फिर क़यामत की कुछ बातें। वारत ना जहन्नम यौम इज़िल काफ़िरीन अर्दा। यहाँ आप सूरत के पहले रुकू को याद कर लें, बिल्कुल वही अंदाज़ है। मुझे लगता है दो ब्रैकटें हैं दुनिया के दजल की। दुनिया की मोहब्बत की पट्टी जब आँखों पर पड़ी तो दुनिया में इंसान मशीन बन गया, जानवर बन गया, और दुनिया से ऐसे गुज़रा कि जहन्नुम के किनारे पे खड़ा है। और उस रोज़ हम पेश करेंगे जहन्नुम को काफिरों के सामने पेश करना कि देख लो आज अपनी आँखों से तुम्हारे लिए अल्लाह ने क्या तैयार किया। अब सवाल पैदा था लिल काफिरीन, काफिर कौन काफिर है? फौरन दिल में आएगा डिसबिलीवर, नॉन मुस्लिम, काफिर नहीं। अगली आयत अल्लज़ीन कानत अय्युनुहुम फ़ी ग़िताएन अन ज़िक्री, ये वो काफिर है जिनकी आंखें पर्दे में थी मेरे ज़िक्र से। नोट करें इस आयत को। इस आयत में अल्लाह की आयतों, अल्लाह के ज़िक्र से आंखें बंद करने वालों को काफिर कहा गया, नशुक्रे के मानों में, अनग्रेटफुल। वकानु ला यस्ततीउन समअ, और वो सुन भी ना सकते थे। क्या पता चला? अल्लाह की आयतों को ना सुनना और आंखों को बंद कर लेना, इससे ये कुफर है। क्या आज मुसलमान इस कुफर का शिकार है? और असल में इस तैयार है कि वो लोग जो अंधे और बहरे होकर दुनिया समेटने में लगे हुए थे, हकीकी मुसब्बिबुल असबाब को बिल्कुल फरामोश कर चुके, सिर्फ दुनियावी असबाब और वसाइल पर भरोसा करते थे। दुनिया में सारी तगोदो मादी फ़ायदे, मटीरियलिस्टिक अप्रोच इसके हसूल के लिए थी। इसीलिए अब आखिरी रुकू जो अगला आ रहा है, इसमें आप देखेंगे बड़ा तुर्श अंदाज़ है, चुभने वाला सवाल है। आयत 102 से 110 तक अब लास्ट पार्ट क्या है, इसमें बड़े वाज़े अंदाज में अल्लाह ने बता दिया कौन लोग हकीकी गुमराही और कुफर में और दजल में मुबतला हैं। अगरचे क़यामत के करीब एक दज्जाल अकबर आएगा, इसका ज़हूर आज दुनिया की मोहब्बत और दज्जालियत की सूरत में हो चुका। आज का इंसान दुनिया के हासिल होने में इतना मशगूल हुआ, गाफिल हो गया, नमाज़ें आगे पीछे, रोज़े आगे पीछे, जुदाई, तन्हाई और न जाने क्या कुछ कि आखरत की फ़िक्र नहीं, खालिक और मालिक की मर्ज़ी क्या है इसका होश नहीं है। और वही बात है कि इस दुनिया जिसको चाहने वाले ही बहुत हैं। आपको पता है कि दुनिया का एक नाम रखा हुआ है अदब में, लिटरेचर में, क्या है? अरूसे हज़ार दामाद, ऐसी दुल्हन जिसके हज़ारों चाहने वाले हैं। कहते हैं ये दुनिया एक ऐसी दुल्हन है जिसको सारे ही चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहरी तौर पे ये खूबसूरत बड़ी है, दिल फरेबियाँ, चमक दमक। इसलिए अल्लाह ताला अगली आयत में कहते हैं अफा हसिबल्लज़ीना कफरू, क्या काफिरों ने ये समझ रखा है, अई यत्तखिज़ु इबादी मिन दूनी औलिया, कि वो मेरे ही बंदों को मेरे मुकाबले में अपना हमायती बना लेंगे। यानी ये लोग जिन अंबिया और रुसल और मलाइका और नेक लोगों को मेरे शरीक ठहराते हैं, इन्हें अपना कारसाज समझते हैं, हैं तो वो सब मेरे बंदे, क्या ये मेरे सिवा किसी ऐसे को पूछ सकते हैं जिसको मैंने पैदा ना किया हो? समझ आ रही है बात? यानी मुझे नहीं पूछ रहे तो जिसको पूछ रहे हैं वो भी तो मेरा ही है। चाहे हज़रत ईसा की कोई पूजा करे, अब्दुल कादर जिलानी के साथ कोई बातें जोड़ दे, हैं तो ये सारे मेरे बंदे। तो तुम मेरे बंदों को अपना माबूद बनाते हो, मुश्किल कुशा बनाते हो, तो याद रखना इन्ना अतदना जहन्नम लिल काफिरीन नुज़ुला, यकीनन हमने तैयार कर रखा है जहन्नम को ऐसे काफिरों के लिए मेहमानी। मेहमानी क्या है? हॉस्पिटैलिटी। हम ऐसे लोगों की जहन्नम में बेहतरीन मेहमान नवाजियाँ करेंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। और फिर वो अमाल जिसमें शिर्क हो या बिदत हो या रियाकारी, तीन लफ्ज़ लिख लीजिए, काम नेकी का लेकिन शिर्क है आपके अंदर फिर भी नेकियां करते हैं, बिदत है नबी की इत्तबा से आगे चले जाते हैं फिर भी नेकियां करते हैं, और तीसरी चीज़ दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। ये वो काम है जिनको अल्लाह ने यहाँ अख्सरीन आमाला का, कैसे? कुल हल नुनब्बियुकुम बिल अख्सरीन आमाला, आप कहिए क्या हम तुम्हें बताएं अपने आमाल के एतबार से सबसे ज़्यादा खसारे में कौन है। और इसका एक छोटा सा नाम लिख लें, बैंक करप्ट। अक्सर कौन होता है जिसका खसारा बहुत ज़्यादा? खसारा किसको कहते हैं? लॉस, लूज़र वन। एक होता है थोड़ा सा लॉस, लूज़र, चलो इसमें लॉस हुआ दूसरे में फ़ायदा। बैंक करप्सी क्या होती है? घर की चाबियाँ भी जाके बैंक को दे आते हैं। अल्लाह कहते हैं वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी शिर्क बिदत रिया के साथ काम किए एक तरफ, अब दूसरी तरफ लिखिए जो सारी ज़िंदगी इस दुनिया की तलब में खोए रहे, वो भी अख्सरीन आमाल है। ये है असल में वो मज़मून जिससे इस सूरत का सतून, इसकी पीक, इसकी हाइट करार दिया गया। क्या दुनिया और उसकी ज़ेब व ज़ीनत? सूरत के शुरू में एक दीवार खींच दी, अब दूसरी यहाँ खींच दी कि देखो दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत, इसकी रौनक, ये खूबसूरत महफिलें, सजी सजाई चीज़ें, ये इंसानों की आजमाइश है। सूरत के शुरू में आयत 7 में क्या पढ़ा था? इन्ना जालना मा अलल अर्दी ज़ीनतल्लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। और अब यहाँ बताया जा रहा है कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी दुनिया कमाई, अपनी मेहनतें, अपनी कोशिशें, मुशक्क़त, भाग दौड़, सब कुछ घाटा, तो ये लोग असल में नाकाम है। देखिए मेहनत तो हर एक करता है, उसका फल क्या है? हमारी एक बड़ी अच्छी सिस्टर हैं, काम करती हैं दीन के लिए, तो अपना एक्सपीरियंस सुना रही थी। ऑलमोस्ट किसी ना किसी तरह आना पड़ता है, रोज़ ही आते हैं जाते हैं, चक्कर लगता है। कहती मेरे बच्चे मुझे एक दिन पूछते हैं, मामा आप रोज़ नूरुल कुरान जाती हैं तो आपको कितने पैसे मिलते हैं? मैंने कहा इतने बड़े हो गए? कहते सबकी मामा, बंदा वहीं रोज़ जाता है जहाँ मिलता है। तो कहने लगी कि मैंने कहा बेटा मैंने ना एक अकाउंट खोला हुआ है, तो मैं जब भी नूरुल कुरान जाती हूँ ना तो उसमें पैसे डलने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे खुश हो गए कि मामा का है कोई अकाउंट छुपा हुआ। तो कहने लगी कि मैं उसमें रोज़ जाती हूँ, तो उसमें जब भी मैं जितना जाती हूँ, जितना पेट्रोल लगता है गाड़ी का, तो मेरे पैसे उसमें जाते हैं। तो बच्चों में से एक कहने लगा, मामा फिर आप गुस्से से ना जाया करें, फिर आपके उस दिन पैसे कट जाएंगे। बात समझ रहे हैं? वल्लाही वल्लाही हर बंदा दुनिया में काम करता है, मेहनत मुशक्क़त हर बंदा करता है। अल्लाह के नबी ने कहा, कुल नासी यगदू फबायुन नफ्सहु फमोतिकुहा औ मूबिकुहा। क्या हर इंसान जब सुबह करता है तो ख़ुद को बेचना शुरू करता है, फिर या तो वो इसे आज़ाद करा लेता है या गुनाहों से हलाक कर लेता है। याद रखिए, हर एक अपने आप को बेचता है। कोई अपनी ताकत और कुव्वत बेचता है, कोई अपनी ज़हानत और सलाहियत बेच रहा है, कोई अपना वक्त बेच रहा है, पर आवर लेता है घंटों के अतबार से। वकील से बात करें आपसे 500 करोन घंटे के ले लेगा, डॉक्टर से बात करें हो सकता है 1000 ले लेगा। लेते हैं ना, हर एक यहाँ बेच रहा है। कोई इल्म लिया है तो उसको बेच रहा है। ये दुनिया मेहनत अमल और कोशिश की दौड़ का मैदान है। हर बंदा अपने मुफाद के लिए अपनी हिम्मत के मुताबिक इस दौड़ में शामिल है, मगर बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरी कोशिश और मेहनत के बावजूद घाटे में रहते हैं। इनके लिए ख़ुद को बेचने के लिए इस अमल में कोई नफ़ा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। ऐसे लोग कौन है? आइए अगली आयत में ख़ुद पढ़ लें, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। कौन? अल्लज़ीन दल्ला सईहुम फ़िल हयात दुनिया। यकीन करें, जितना उदास लहजा करके सैड फीलिंग्स के साथ इसको पढ़ें और सुने, उतना थोड़ा। मैं जब इसको पढ़ती हूँ तो मेरा ऐसे अंदर से जैसे वो एकदम बीपी लो होता है ना बंदे का, अल्लज़ीन दल्ला सईहुम फ़िल हयात दुनिया। फिर एक डीप ब्रेथ लेके बंदा कहता है, वो लोग जिनकी सारी कोशिश और जिद्दोजहद दुनिया ही की ज़िंदगी में गुम होकर रह गई। ऐसे लोग जिन्हें आखरत मतलूब ही नहीं थी, रब्बन आती ना फिर दुनिया, रब्बन आती ना फिर दुनिया ही कहते रहे। आखरत का हसना तो उन्होंने मांगा नहीं, दुनिया का भी नहीं मांगा। सारी तगोदो, सोच विचार, भाग दौड़, गाड़ी का पेट्रोल, दुनिया दुनिया के लिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखरत के लिए ना तो कभी प्लानिंग की ना मेहनत की, बस ब्राए नाम विरसे में मिला हुआ एक इस्लाम, मुसलमानी का भरम रखा, जुमे की नमाज पढ़ ली, 5 वक्त की नमाज भी कभी पढ़ ली, कभी कोई नए काम किया, कभी रोज़ा रख लिया, लेकिन अल्लाह को इनसे असल में मतलूब क्या था, मकसूद क्या था, अल्लाह ने पैदा क्यों किया, इस बारे में कभी संजीदगी से नहीं सोचा, जहमत ही नहीं की। तो अल्लाह कहते हैं, ऐसे लोगों को मैं दुनिया में उनके बदले दे देता हूँ, आखरत में इनके लिए कुछ नहीं है। सूरत बनी इसराइल आयत 18-19 याद आ रही है? मन का नयुरीदुल आजिला आजिला ता जल ना लहू फीहा मा नशा। जो ये जल्दी मिलने वाली दुनिया चाहता है तो हम इसको जल्दी से दे देते हैं, जिसके लिए जितना चाहते हैं, फिर आखरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। मज़मून जाके लिख लीजिए दोबारा। तो याद रखिए, सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। असल अक्लमंद ईमान वाला है, दुनिया में भी उसको मिलता है इस कोशिश का बदला, आखरत में भी मिलेगा। आखरत को पाने वाला हर बंदा दुनिया के फ़ायदों से गुजर के जाता है, ये भी याद रखिए। दुनिया ज़रूरत है, मकसद नहीं है। दुनिया तो नेक और बद सबकी पूरी हो रही है। आयत 20 बनी इसराइल में क्या पढ़ा? कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिनताई रब्बिक। हर एक को हम ही मदद दे रहे हैं, दुनिया वाले को भी, आखरत वाले, इनको भी, उनको भी, और आपके रब की अता रुकी भी नहीं है। काफिर भी खा के सोता है, फादिर भी खा के सोता है, चरसी, भंगी, ड्रग एडिक्टेड, शराबी, कबाबी खा के सोते हैं, कोई भूखा तो नहीं सोता। तो करना क्या है? मेरे आपके लिए मैसेज, लिखिए जुमला, दुनिया की ज़रूरियात अल्लाह पर तवक्कुल पे छोड़ दें। इसने दुनिया में आपको मुझे पैदा किया, ज़िंदा रख रहा है, हमारे खाने पीने का वादा किया उसने। और सूरह तलाक आयत 3 में कहता है, वयरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, और इसको वहाँ से रिस्क देगा जहाँ से इसे गुमान भी नहीं होगा। एक बंदा मोमिन को चाहिए कि दुनिया की फ़िक्रों से बेनियाज हो जाए और आखरत को अपना मतलूब और मकसूद बनाए। उन रास्तों पर ना चले जिस पर सारे चल रहे हैं, जो घाटे के रास्ते हैं, जो मेहनत तगो दौ दुनिया में गुम होनी है। और वहुम यख्सबून अन्नहुम युहसिनून सुनअ, और वो समझते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, जॉब में तरक्की हो रही है, घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, सेलफोन भी ले लिया, जायदादें बन गई, तरक्कियाँ हो गई। का नहीं, उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जिन्होंने इनकार किया अपने रब की आयतों से, वलिकाई ही और इसकी मुलाकात से। कैसे? ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। नहीं, ऐसे लोग बेशक इकरार करते हैं कि वो अल्लाह और कुरान को मानते हैं, लेकिन हकीकत में वो आखरत को भुलाकर दिन रात दुनिया को समेट रहे हैं। वो अपने अमल से गोया अल्लाह की आयत और आखरत में इससे होने वाली मुलाकात का इनकार कर रहे हैं। अल्लाह का फैसला क्या है? सूरत अनकबूत आयत 64, वइन्नद्दार अलआखिरत लहियल्हयवान। यकीनन आखरत की ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है, लेकिन दुनिया की तलब करने वाला इस बात की तस्दीक करने की बजाय इसको झुठलाता है। अल्लाह ताला कहते हैं, यही वो लोग हैं कि महशर के दिन उनको खड़ा करके क्या सुनाऊंगा? फहबितत आमालुहुम, बस ज़ाया हो गए, बर्बाद हो गए उनके अमल। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, और नहीं कायम करेंगे हम क़्यामत के दिन इनके लिए कोई वज़न। इसको नोट कीजिए, ये आयत तो ज़ुबान पर रहती है अक्सर। काफिरों का हिसाब नहीं होना, सारा हिसाब क़्यामत के दिन ईमान वालों का है। ये क्या मैंने कह दिया, गलत कह दिया? सोचिए, नहीं सही कहा मैंने। काफिर बिला हिसाब फेल है, उनके लिए हिसाब की क्या ज़रूरत है? उन्होंने तो पहले दिन कह दिया था, हम नहीं मानते हिसाब किताब को। ला यरजू न लिखाना, क़्यामत के दिन ऐसे लोगों के आमाल का वज़न ही कोई नहीं होना। अगर उन्होंने दिल की तसल्ली और ज़मीर की खुशी के लिए भलाई के कुछ काम भी किए थे, तो ऐसी नेकियां जो ईमान और यकीन से खाली हों, इनकी अल्लाह के यहाँ कोई हैसियत नहीं है, वो ज़ाया की जाएंगी। अगर बिलफर्ज नामे अमाल में वो रख भी ली, अव्वल तो रखनी कोई नहीं, अल्लाह कहते हैं हम क्यों ज़ाया करें वक्त इन पर। अगर रख भी ली तो वहाँ इसका मच्छर के पर के बराबर भी वज़न नहीं होगा। हदीस में आता है, एक मोटा ताज़ा काफिर जब नामे अमाल में उसका वज़न किया जाएगा तो एक मच्छर के पर के बराबर भी उसका वज़न नहीं होगा। वजह क्या है? कि वो तो दुनिया के लिए करते थे, अल्लाह ने दुनिया में दे दिया। यकीन करें, इस पूरी सूरत में आयत 7, 27 और 46, ये बात आप इतनी कसरत से पढ़ चुके हैं कि अब सिर्फ इस पे गौर व फिक्र ही कर लें तो बहुत है। अब सवाल पैदा होता है, क्यों आखरत क्यों नहीं मिली इसको? तो उसका जवाब, ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नमु बिमा कफरू, इनका बदला जहन्नुम है बसबब इसके कि उन्होंने कुफर किया। वत्तखज़ु आयाती व रुसुली हुज़ुआ, और मेरी आयात और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया। ये है असल बात, अल्लाह की आयतें, रसूल का फरमान, इसके मुताबिक तो असल ज़िंदगी आखरत की ज़िंदगी थी। दुनिया की ज़िंदगी की तो कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन दुनिया तलब करने वालों ने यह समझ लिया कि असल कामयाबी इस दुनियावी ज़िंदगी की कामयाबी है। बस उसी के लिए कोशिशें करते रहे, हलकान होते रहे, खुद को थकाया, दुनिया को खपाया, संवारते सजाते अपग्रेड करते करते दुनिया से चले गए। आखरत को तो इन्होंने कुछ इज़्ज़त की चीज़ ही ना समझा, पार्ट टाइम थी आखरत। कितने लोग हैं आज जो फुल टाइम आखरत के लिए काम करने को तैयार है? कितने लोग हैं जो इस कुरान को फुल टाइम दर्द हम गम बनाते हैं? अल्लाह भूखा नहीं सुलाएगा आपको, ये मैं बताऊं। गर्मी में कपड़े भी देगा, सर्दी में भी देगा, खाना भी देगा, आपकी हर ज़रूरत बिन मांगे देगा। देखिए, अल्लाह ने अकल दी है ना, आप अपने ऊपर लें। ज़ाहिर अगर आप कुरान का लफ्ज़ी तर्जुमा याद कर पा रही हैं, तजवीद बेहतर कर रही हैं, तो आप में यकीनन स्किल्स हैं, आप किसी भी शोरूम में खड़े होके जॉब कर सकती हैं। आप में स्किल्स हैं, बोलने की भी है, खड़े होने की भी है। कितना कमाएंगे? 10,000, 20,000, 25,000 आप ले लेंगे महीने का। अब आप कहते हैं कि 25,000 घर में आए, थोड़ा तो नहीं है, बहुत सारी ज़रूरतें। और फिर शैतान उसमें से कहेगा, हाँ वो कर्ज़े भी तो उतारने हैं, बच्चों की शादियाँ भी, और मेरे पाकिस्तान में बड़े गरीब रिश्तेदार हैं, मैं उनकी भी मदद करती हूँ। बस ऐसे ही है कि जैसे तोप हो कि इससे दुश्मन को मारो और कोई उससे मक्खियाँ मारने लग जाए। वल्लाह ही ये 25-30 हज़ार से जो अपने नेकियाँ करनी थी ना, वो तो बड़े हैं करने वाले माशाल्लाह। ये तो नॉन मुस्लिम भी करते हैं। कुरान से जुड़े हुए लोगों को अपने आप को किसी दूसरी जगह खपाना, ये ना कदरी है, ये ना शुक्री है। अल्लाह कहते हैं ऐसे लोगों को वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। और रह गई तसल्ली, तो कहते हैं नबी की उम्मती हैं, शिफात करेंगे, जहन्नम से निकाल लेंगे। देखिए यहूद क्या कहते थे, नहनो हिब्बाहु, हम अल्लाह के प्यारे हैं, लाडले हैं, हम उसके बेटे हैं, बच्चे हैं। तो याद रखिए यहाँ जितनी दफ़ा लफ्ज़ काफिर आ रहे हैं ना, तो ये इस्तलाही काफिर नहीं है जिसको हम डिसबिलीवर कहते हैं, बल्कि ऐसे लोग जो लिखे जुमला कानूनी तौर पे मुसलमान है, बर्थ सर्टिफिकेट के खाने में नाम रिलीजन में इस्लाम लिखा हुआ है, पासपोर्ट पे भी मुस्लिम लिखा हुआ है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को पसे पुश्त डालकर सिर्फ़ और सिर्फ सर से पाँव तक दुनिया के ताले बने हुए हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को यहाँ डांट रहा है, ये दज्जाल है, ये फितना है इस दुनिया का इस वक्त। चाहे ये कोई मुसलमान है, कोई लीडर है, कोई मजहबी पेशवा है, कोई आलिम है, वो कहते हैं ना कि जो दम गाफिल सो दम काफिर, जो लम्हा इंसान का गफलत में गुजर गया उस लम्हे वो काफिर हो जाता है। तो आज बैठकर सोचेंगे मैं और आप, हकीकत में मैं तालिब दुनिया हूँ या तालिब आखरत। और आप देखिए ये आखिरी रुकू इन आयात का दज्जाली फितने से हिफाजत के लिए क्यों अल्लाह के नबी ने कहा याद कर लो, जिसने ये आयतें पढ़ लीं उसके दिल में दुनिया रहेगी, तो जब दज्जालियत नहीं रहेगी तो दज्जाल भी आ गया तो बच जाएगा। इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला। इसके बरक्स वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, इनकी मेहमानी के लिए फिरदौस के बागात होंगे। इस आयत की सबसे खूबसूरत बात पता क्या, फिरदौस नाम जन्नत का सबसे आला मुकाम, और यहाँ पे आता है कुरान में, हदीस में आता है कि जब तुम अल्लाह से तलब करो तो जन्नतुल फिरदौस तलब करो, क्योंकि इसकी छत रहमान का अर्श है। अल्लाह के सबसे करीबी लोग, अल्लाह हम सब को जन्नतुल फिरदौस दे। और आमन और आमिलुस्सालिहात तो तस्करा कुरान में बीसियों बार हुआ, यहाँ क्या मुराद है कि जिन लोगों ने ईमान के तकाजे भरपूर तौर पर पूरे किए, नेक अमाल करते रहे, उनके लिए फिर भरपूर जन्नत है। जिन्होंने अधूरी कोशिश है कि उनको फिर दोस्त नहीं मिलेगी, सॉरी उनको नहीं मिल जाएगी, माँ बाप मिल जाएगी, जन्नत के बड़े दर्जे हैं, फिर दोस्त उनको मिलेगी जिन्होंने ईमान के भरपूर तकाजे पूरे किए, नेक अमाल किए, अल्लाह उनको ठंडी छाँव वाले बागात भी देगा। आज हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते वो कैसे कहाँ। फ़ला तालम नफ्सुम मा अख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन। इस कायनात की वसत नहीं हमारे जहन में आ पाती तो जन्नत की वसत कहाँ आएगी। इतनी कहकशाएँ, इतना कुछ अल्लाह ने क्या कुछ वहाँ रखा हुआ है। पिछली जन्नत वाला ऊपर वाले को ऐसे देखेगा जैसे हदीस में आता है तुम ज़मीन पर सितारों को देखते हो। तो मैं और आप उस जन्नत के लिए क्या सोचें। और ये जो नुज़ुल है ना, पहला खाना मेहमान नवाजी इसी ज़मीन पर होगी। पहला खाना कैसा होता है, मेज़बान की मर्ज़ी का होता है, फिर बाद में कहते हैं आप बताएं आज क्या पकाएं। खालिदीन फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला, वो इसमें हमेशा रहेंगे और वहाँ से जगह बदलना ही नहीं चाहेंगे। दे डोंट वॉन्ट टू मूव, कोई इस दुनिया से नहीं जाना चाहता, वहाँ से कौन जाना चाहेगा। पास लोग कहते हैं हाय बोर नहीं हो जाएंगे, और वल्ला ही आज के बच्चे की ज़ुबान खोली माँ को कहता है, कहता है आई डोंट वॉन्ट टू गो टू जन्ना, बोरिंग, नो म्यूज़िक, नो दिस दिस दिस, तुम जाओ अनसीन फ्रेंड के साथ तुम बातें करो। अल्लाह, ये एक बच्चे की कहानी है जो माँ को कहता है आई डोंट वॉन्ट टू गो टू जन्ना, अगर इफ़ देर इज़ नो म्यूज़िक देयर, इफ़ नो फन पार्टी, आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। ये हाल है आज की नस्ल का, ये फितना है। अल्लाह उनको और हमें सबको बचा के रखे। तो बस बात ये, आज आप कश्मीर को या स्विट्ज़रलैंड या नॉर्वे को कह दें कि फिर दौर बर हुए ज़मी अस हमी अस हमी अस, तो ये झूठ है। दुनिया में फिर दोस्त नहीं हो सकती। कुल लौकान अलबहर मिदादल कलिमात रब्बी लनफिद अलबहर क़ब्ल अन तन्फद कलिमात रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिही मददा। ऐ नबी आप कहिए कि अगर समंदर रोशनाई यानी स्याही बन जाए मेरे रब के कलिमात को लिखने के लिए तो यकीनन समंदर खुश्क हो जाएंगे इससे पहले कि मेरे रब के कलिमात ख़त्म हो, अगरचे इसी की तरह और समंदर भी हम इसकी मदद पर ले आएं। यहाँ आप ज़रा बनी इसराइल की आखिरी आयत से पहले की आयत को जहन में लाएं, याद है आपको, क़ुलिदुल्लाह अबिदुर्रहमान अय्यम्मा तदु फलहुल अस्माउल हुस्ना। वहाँ क्या था कि तुम अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, सब उसी के नाम है। سورت بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ کے اسماء کا ذکر تھا، یہاں اللہ کے کلمات کا ذکر ہے، اور کلمات سے مراد اس کی مختلف مخلوقات ہیں، کیونکہ ہر مخلوق کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہے، تو لہٰذا اللہ کی مخلوقات کا احاطہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ سورت لقمان 27 نوٹ کر لیں، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ أَقْلَامٌ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر زمین کے تمام درخت کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی ہو، اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، یقیناً اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کل ہم نے ایک پریزنٹیشن دیکھا تھا شام کی کلاس میں، ایک ایریل ویو تھا، گلیکسیز بڑی سے بڑی جس کو خالی آنکھ سے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ادھر سے شروع کر کر کے یہ آنکھ، آنکھ کے اندر کی وینز اور اس کے اندر ڈی این اے۔ میں کہتی تھی ہر جگہ، میں یہی کہہ رہی تھی کہ سبحان اللہ ہی وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس رب کو چھوڑ کر، اس پہ نظریں لگا کر جینے کی بجائے اس دنیا کے دھوکے میں انسان آئے تو ناقدری ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، فرق کیا ہے؟ یوحا الی، وہی کی جاتی ہے میری طرف، اور وہی کا خلاصہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ بس ایک معبود ہے۔ اب کیا کرو؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو بھی امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بھی عبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ ہے عبادت خالص۔ شروع صورت میں کیا تھی؟ عبادت، کہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی، یاد کیجئے، اور یہاں توحید عملی۔ سورت بنی اسرائیل 23 میں کیا پڑھا تھا؟ وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تو یہاں بدل کے بات کر دی، اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی آخری آیت کا بھی ربط سمجھ لے، موازنہ کر لے، بعد میں جا کے کھول کے بھی دیکھ لے۔ بنی اسرائیل کی آخری آیت کیا تھی؟ آیت 111، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، یاد آ گئی ہے؟ اس آیت میں اللہ کا بلند مقام تھا، اس کی شان بیان کر کے شرک کی نفی کی گئی، کہ اللہ کے ساتھ شرک کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اللہ کا الوہیت کے درجے سے اتار کر مخلوق کے درجے پہ کھڑا کیا جائے، یا پھر مخلوق میں سے کسی کو اوپر کر کے اللہ کے برابر کیا جائے۔ تو لہٰذا بنی اسرائیل کی آخری آیت میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کر کے حکم دیا گیا شرک کی پہلی صورت کا، اور یہاں سورت کہف کی آخری آیت میں شرک کی دوسری صورت، یعنی مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کے برابر کرنے کی نفی کی گئی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ہر دور کی روایت رہی کہ لوگوں نے مخلوق کو خالق کے برابر بنایا، مثلا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا درجہ دیا، اہل عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، آج ہمارے ہاں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو اللہ کے برابر قرار دیا جاتا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ جائیے کسی اردو پڑھے ویسے شعر کا مطلب تو سمجھیے، کہتے جو عرش پہ خدا تھا نا، زمین میں وہ محمد بن کے آ گیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور حضرت علی کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات، یعنی ہم نہیں کہتے کہ علی کی ذات جو وہ خدا ہے، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی، ہے وہ بھی اللہ کے وجود کا کوئی حصہ، نعوذ باللہ۔ اور کسی نے کہا کہ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی جو تراب میں ہے، حضرت علی کے نام کے ساتھ تراب لفظ تھا، کہتے تھے کرتا بندگی اللہ کی ہوں لیکن تصور میں علی ہے میرے، نعوذ باللہ، کہ جب میں ابو تراب حضرت علی کی بندگی کرتا ہوں تو حقیقت میں وہ میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں۔ اور آج آپ دیکھیے کہ کئی لوگوں نے حضرت علی کو دشم اوتار بنا کر پیش کیا، ہندوؤں کے 9 اوتار ہیں، اوتار کہتے ہیں روپ، خدا کے روپ میں کوئی آتے ہیں، اور حضرت علی کو 10واں اوتار بنا لیا آج کے مسلمان نے۔ دعا کیجئے کہ آج علم کے ساتھ ٹوٹی بھی یہ ڈوریاں جڑنے لگیں، कितने कम लोग हैं जिनको इन बातों की खबर है कि सूरत कहाव जुमे को क्या देती है। अल्लाह ताला से दुआ है अमल की तौफीक दे, कमी बेशी को दूर करे, खताओं को माफ़ करे। जिस तरह सूरत कहाफ हमने पढ़ी अल्लाह के हुक्म से, इसी तरह की खूबसूरत सूरतें आगे हैं। जिस दर्जे पे आप सीखना चाहें मोस्ट वेलकम, कोई आपको मजबूर नहीं करता, लेकिन यह है कि आपसे आगे पूरा आधा कुरान बाकी है और इंशाल्लाह अगले 5-6 महीनों में अल्लाह ने चाहा तो ये कुरान पाक तकमील की तरफ पहुँचेगा। इस वक्त जो इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, मैं कहती हूँ वो डबल डिलाइट लेंगे, थोड़े वक्त में ज़्यादा मिलेगा। अल्लाह ताला हमें इससे फ़ायदा लेने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. اللهم إنا نسألك الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً.